आगे देखते हैं आयत नंबर 67 से। मा कान लिन्नबी अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुन हकीम। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए, जब तक के मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग न हो। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखरत का है, और अल्लाह ताला जोर आवर बा हिकमत है। अगर पहले ही अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने लिया है इस बारे में तुम्हें को बड़ी सजा होती। बस जो कुछ हलाल और पाकिजा गनीमत तुमने हासिल की है खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये थी आयत नंबर 67 से 69। इनका उनवान है कुफर के सरों को कुचल दो। गज़वे बदर के तनाजर में ये सारी आयात हैं। जब जंग खत्म हुई तो मुसलमानों के हाथ में 70 बड़े बड़े सरदार आ गए, जिनके आने को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक इस बात की दलील बना दिया था कि हर वो सर जो इस्लाम के खिलाफ होगा या मुसलमानों के लिए गलत बातें सोचेगा बिल आखिर उसको पकड़ा जाएगा, इस दुनिया में ना सही आखिरत में होगा। ये पहली जंग थी, नहीं पता था कि कैदियों के साथ इस्लाम क्या करवाना चाहता है, क्योंकि पहले से जो जंगों के असूल थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे और इस्लाम में कुछ चीजें जो थी बिल्कुल नई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक लोगों से मशवरा लिया, और एक अच्छे लीडर की यही अलामत होती है कि वो लोगों से मशवरा लेता है। हजरत उमर फारूक और हजरत साद बिन माज की राय क्या थी कि इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये अपनी कौम को जमा करके इस्लाम के खिलाफ लेके आए हैं। अगर इनको जाने दिया तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में मुसलमानों के लिए मजीद मुश्किल खड़ी करें। लेकिन अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी दिल की नरमी और दूसरों के लिए हमेशा ही नरम गोशा रखने की वजह से आपने इनका जिजिया लेके छोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त इस्लाम को माल की भी जरूरत थी। अल्लाह के नबी का ये फैसला कोई अपनी जात के लिए नहीं था। एक गिरोह ने एक तरफ को सोचा, दूसरे ने दूसरी तरफ सोचा। जिन्होंने ये फैसला कर दिया उन्होंने सोचा कि इस्लाम को माल मिलेगा, इस वक्त मदीना एक कमजोर रियासत है, इसका फायदा होगा। दूसरों ने दूरस बात सोची, पहलों ने करीब रस बात सोची। अल्लाह का फैसला ये था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। यहाँ से जिंदगी का एक बड़ा गहरा असूल निकलता है कि बस दफा इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता क्या है कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखे और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखे। तो बेहतरीन चीज क्या होती है कि इंसान लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखे, और अल्लाह ताला ने फिर इस मौके पर आयतें नाजिल करके बता दिया कि वो सर जो इस्लाम के खिलाफ होंगे अल्लाह ताला फिर उनको छोड़ना नहीं चाहता। और इस इज्तिहादी गलती का वाकई वही नुकसान हुआ कि उस वक्त अगर इन लीडरों को कुचल दिया जाता तो बाद में इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हाथ कभी भी इसकी जरूरत न करते। लेकिन चूंकि इस वक्त माल लेके इनको छोड़ दिया गया था तो फिर कुछ अरसे के बाद ये दोबारा मुनज्जम होके और ज्यादा मुजाहमत के अंदाज में मुसलमानों के सामने आ गए। इसे ये असूल भी निकला कि जब इंसान किसी छोटी बुराई को कबूल कर लेता है तो बाद में वो बड़ी बुराई बन के इंसान के सामने आने लगती है। इसी बात को अल्लाह ताला ने इन आयात में हमारे सामने रखा, और ये फैसला जंगी मसलहत के भी खिलाफ था, क्योंकि मुसलमान सिर्फ माल से फतह नहीं हासिल करते। इनसे माल तो मिल गया, लेकिन वो सोच जो मुसलमानों के खिलाफ उस माल को इस्तेमाल करने वाली थी उस सोच को नहीं कुचला गया। तो इससे एक और खूबसूरत असूल निकलता है कि मुसलमानों की कोशिशों का रुख नॉन मुस्लिम से माल हासिल करना नहीं, उनकी तरह के रिसोर्सेज हासिल करना नहीं, बल्कि उन सोचों को बदलना है जो उनको इस्लाम के खिलाफ माइल करती हैं। और इन सोचों को बदलने का आज भी वही तरीका है जो कल था, और वो क्या है कि इनको इस्लाम के ताबे कर दो। सूरत तौबा इंशाल्लाह हमें इस बारे में बहुत सारी रहनुमाई देगी कि इस्लाम का क्या मिजाज है कि काफिर के कुफर को खत्म किया जाए, ना ये कि काफिर को खत्म कर दिया जाए। या अय्युहन नबी युकुल्लि मन फी अय्दीकुम मिनल असरा। ए नबी, आपके हाथ तले के कैदियों से कह दीजिए कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें देगा, और फिर तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमाएगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर ये तुझसे खयानत का ख्याल करें तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके हैं, आखिर इसने इन्हें गिरफ्तार करा दिया, और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 70 से 71। इसका टॉपिक लिखिए मोहलत ने इस्लाह का दरवाजा खोल दिया। गो के जंगी कैदियों को बदर के जंगी कैदियों को छोड़ देना मुसलमानों की एक गलती थी, लेकिन इस गलती ने उन कैदियों को एक नई जिंदगी फराहम की। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को एक और मौका दिया कि सोच समझ लो कि इस्लाम के खिलाफ जो तुम अंधाधुंध किस्म की मुखालफत करते हो, गौर करो कि इस्लाम के पीछे कौन सी ताकत है जो इतने बड़े बड़े सरदारों को मुसलमानों के सामने ले आई। लिहाजा अब दो राय हो सकती थी, एक तो ये थी कि जो कैदी छुटे यहाँ से वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज होके और ज्यादा मुनज्जम होके अपने उस मामले को मुसलमानों के मजीद खिलाफ करें, दूसरी सूरत ये थी कि वो सोचें आखिर एक छोटा सा गिरोह क्यों कामयाब हुआ, इनके पास असबाब नहीं थे, को फतेह मुबीन क्यों मिली। ये इस बात की रोशन दलील थी कि अल्लाह का साथ ईमान वालों के साथ है, ना कि कुरैश वालों के साथ। अगर ये दूसरी सोच पैदा हो जाती तो लोग फिर अपनी रविश को बदल लेते और पहले दीन पे कभी भी जमना ना चाहते। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग चीजों के असबाब को देखते तो हैं लेकिन उससे सही नतायज हासिल नहीं करते और पहली सोच पे आ जाते हैं कि मजीद इंतकाम लेने के लिए इस आग के अंदर और जलने कुड़ने लगते हैं कि अच्छा अगर एक दफा बच गए अब और जरा इनको करके खाएंगे, और इस तरह फिर वो अपनी गलतियों को दोहराते ही जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में कुछ ऐसे भी लोग निकले कि जिन्होंने दूसरी किस्म के लोग होने का सबूत दिया और उनके दिल इस्लाम के लिए खुल गए। इन्हीं में अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी थे, जो अल्लाह के नबी के सगे चचा थे। उन्होंने अपनी कैद से बचने के लिए जिजिया दिया तो बाद में जब ये आयत उतरी कि अगर अल्लाह ने तुमसे कुछ ले लिया तो यू ती कुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम, अल्लाह तुम्हें वापस देगा, कहा करते थे कि बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने फिदिये में जो माल दिया था उससे बहुत माल फिर मुझे इस्लाम में आने की वजह से गनीमतों में मिला। ये यहाँ सिर्फ एक जंग का असूल नहीं है, ये एक बंदे मोमिन का मुंतहाए नजर हो सकता है, उसका दिल का ईमान होता है कि आज मैं जो अल्लाह के लिए दूंगा मुझे अल्लाह दुनिया में ही वापस देगा। चले आखिरत के फायदों को अगर एक तरफ कर ही दिया जाए, अल्लाह का ये वादा है कि जो मेरी खातिर जो देगा मैं उसको इस दुनिया में भी दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में बज़ाहर नहीं मिलता लेकिन यकीन करिए कि अल्लाह कभी किसी का नहीं रखता। क्या हम किसी का रखते हैं? हमें कोई $10 भी दे दे तो हम कहते हैं किसी तरह इसको 11 करके वापस करें। कोई हमारी एक वक्त खिदमत कर दे हम कहते हैं कभी मौका मिले हम भी इसकी खिदमत करें। कोई हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ सहे हम थैंक यू कह कह के उसको मजीद शर्मिंदा कर देते हैं, तो क्या अल्लाह की ज़ात जो सबसे बड़ी है क्या वो इंसानों का हक रखेगी? जब इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ते हुए डरता है तो अल्लाह भी सोचता होगा कि इंसान तू क्या सोचता है, तू सोच रहा है कि ये देने का सफर है हालांकि ये लेने का सफर है। और जितनी बड़ी जात को दिया जाए वो उतना बड़ा पलटता है। आप एक कम हैसियत के मालिक हैं, आप किसी को 10-5 की चीज भी दे सकते हैं लेकिन अगर वो जात बहुत बड़ी हो, बहुत माल और दौलत वाला हो सकता है कि वो जब देगा तो वो आपको 100-200 का भी गिफ्ट दे दे, क्योंकि उसके लिए 100-200 भी ऐसे ही है जैसे आपके लिए 10-15 है। जरा सोचिए अल्लाह की जात जब बंदे को पलटाएगी तो वो कितना पलटाएगी। ये है वो सोच जो बंदे को फिर अपना नहीं रहने देती, ये है वो सोच जो बंदे का माल रब का माल बनवाने के लिए उसको बेचैन कर देती है। एक सच्चा मोमिन हर वक्त इस कोशिश में होता है कि ये मेरी छोटी छोटी चीजें, मेरा थोड़ा सा माल, मेरी थोड़ी सी जान, ये मेरा बेकार सा वक्त, ये अल्लाह अपने वक्त में मिला ले, ये अल्लाह अपने माल में मिला ले। कभी आपने लोगों को शेयरिंग की बेस पे काम करते हुए देखा होगा, कुछ कंपनीज बहुत फ्लरिश करती है, बहुत ज्यादा माल होता है उनके पास, उनका बिजनेस अच्छा होता है। जब लोग शेयर खरीदते हैं हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम उसका शेयर खरीद लें, चाहे थोड़ा भी माल है, चलो हमारा थोड़ा परसेंटेज होगा क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस बहुत टॉप क्लास है। बाज दफा कुछ ऐसी चीजें भी होती है जहाँ फ्लरिश नहीं करता तो बाज दफा वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल किस्म की भी अपॉर्चुनिटीज देते हैं लेकिन लोग उसको कबूल नहीं करते। तो जरा सोचिए दुनिया के किसी बिजनेस के अंदर माल लगा के कितना बढ़ेगा, और जिसने अपनी इस हकीर सी पूंजी को अपने मालिक के हाथ में देके मुतमईन हो गया कि रब मेरा माल तेरा माल, मेरी जान तेरी जान, तो जो मुझे देगा मैं उस पर राजी हूँ। एक दफा रब के माल के, रब के खजानों के अंदर अपने खजानों को मिला के देखिए, आपको यहाँ बचे हुए से ज्यादा वहां भेजा हुआ जो है वो अपना लगेगा, और अल्लाह तआला कह वालों को इसकी सबसे ज्यादा तौफीक अता फरमाए। हाँ, यहाँ एक और चीज भी बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है, और वो क्या कि जब कैदियों को मुसलमानों ने छोड़ा तो उनको एक अंदेशा था कि आज जिन पर एहसान करके छोड़ा है वो कल इसका एतराफ़ नहीं करेंगे, और हो सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और तखरीब कारी का रास्ता इख्तियार करके इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें। लेकिन आप देखिए कि कुरान पाक ने इस अंदेशे को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। क्यों? इसलिए कि जो तहरीक या जो सोच या जो कोशिश खालिस अल्लाह के नाम पे उठती है वो इंसानी कोशिश और इंसानी तहरीकात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक ईमान वाला अपने काम को अल्लाह के सपुर्द कर देता है, उसको पता है कि अगर कोई मेरे साथ दुश्मनी करेगा भी तो मुझे इससे फायदा ही होगा क्योंकि मेरा रब जो है वो मुझे इस मामले से बचा लेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअमवालिहिम, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन लोगों ने इनको पनाह दी और मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो ईमान तो लाए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, और तुम्हारे लिए इनकी कुछ भी रिफाकत नहीं जब तक कि वो हिजरत ना करें। हाँ, अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करें तो तुम पर मदद करना जरूरी है, सिवाय इन लोगों के तुम में और इन मेहदों पे माँ है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तआला उसको खूब जानता है। काफिर आपस में एक दूसरे के रफीक हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुल्क में फितना होगा और जबरदस्त फसाद हो जाएगा। ये थी आयत नंबर 72 से 73। इनका उन्वान है मिसाली मुआशरा, आइडियल सोसाइटी के असूल। अल्लाह ताला ने इन आयात में मुख्तलिफ किस्म के गिरोहों का तذکرہ किया। होता क्या कि दुनिया में जब एक इंसान किसी दूसरे की मदद करता है ना, तो उसकी वजह अमूमन इंसान का खानदान या उसका गिरोह या उसकी जमात होती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने हिजरत के बाद जो एक मुआशरा कायम किया, जिसको आज हम मदीना के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल एक अनोखा मुआशरा था। ये एक अनोखी सोसाइटी थी कि जिसमें घर वालों के साथ ताल्लुक भी था तो वो दीन की बुनियाद पे था। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपने वतन छोड़कर आए, उनके नजर में अल्लाह की रजा और आखरत की तलबी थी। लेकिन वो लोग जो घर और माल और औलादों वाले थे, उन्होंने अपने माल और अपनी जायदादों को ऐसे लोगों के लिए खोल के पेश कर दिया। ऐसे ही लोगों से अल्लाह ताला राजी हो गया। ये एक ऐसा मुआशरा था जिसको आज भी इंसानियत ढूंढ रही है। आज भी आसमान और जमीन ऐसा ही खूबसूरत मुआशरा और ऐसा ही खूबसूरत मुल्क दुनिया में देखना चाहते हैं कि जहाँ खानदान और नस्ब की बुनियाद पर नहीं, ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करें लेकिन दुनिया के मजीद फायदे हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि आखरत के फायदे पाने के लिए, और जहाँ लोग एक दूसरे को दें मगर किसी बदले की उम्मीद पे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से उसके इनाम लेने की उम्मीद पे। यही है वो मुआशरा जिसको आप मुस्लिम मुआशरा कह सकते हैं। दुनिया के नक्शे पे आज हो सकता है कि आपको मुसलमान मुल्कों की तादाद एक तवील फहरिस्त की सूरत में दिखे, लेकिन जहाँ जहाँ आपको ये असूल दिखेगा कि लेने से ज्यादा देने वाला बन जाए, जहाँ इंसान की मोहब्बतों का रुख अल्लाह रुखा हो जाए, ऐसे लोग फिर सिर्फ खानदान और ग्रोहों की बुनियाद पे असबियतें कायम न करें बल्कि हक की बुनियाद पे कायम रहें। और जहाँ ये मुआशरा होगा वहीं आप इस्लाम के सारे असूल और जवाबित जब लागू करेंगे तो आपको एक आइडियल सोसाइटी मिलेगी। आप यकीन करें कि आज इसकी जरूरत है। आज हम कहते हैं इसका नाम चूंकि मुसलमानों के मुल्क में है इसलिए ये मुसलमान है, यहाँ चूंकि मस्जिदों में अजान होती है तो ये मुसलमान है। ठीक है, ये सारे रिचुअल्स हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं, लेकिन मुआशरे सिर्फ बेजान चीजों से नहीं बनते। मस्जिदों से कभी मुआशरे नहीं बनते। कभी किसी जगह में, इवन अगर आप हरम को देख लें, तो एक दौर ऐसा भी गुजरा के हरम जिसको लोगों ने बुतों से भर दिया था, उस वक्त भी आप देखिए कि वो कौम पैदा की गई जिसके अंदर वो एथिक्स हो, वो इस्लाम हो के जो असल में मतलूब है। हर तरह के लोग होते हैं, कुछ फौरन दावतों को कबूल कर लेते हैं, कुछ थोड़ी देर से कर लेते हैं, कुछ लोगों की तासुब की दीवारें टूटते हुए थोड़ा वक्त लगता है, कुछ फौरन ही अपने दिल को खोल के सामने आ जाते हैं। जो बंदा जितनी जल्दी हक को कबूल करेगा, अल्लाह के दीन को कबूल करेगा, उतनी ही जल्दी उसके साथ मदद होगी। और फिर हमने इसमें हिजरत करने वालों को देखा, तो हिजरत क्या है? जन्नत में दाखिले का दरवाजा है। इस हिस्से का आप एक दूसरा टॉपिक भी लिखेंगे साथ कि हिजरत जन्नत का दरवाजा। कि एक बंदा जब अल्लाह के नापसंदीदा मुकाम से निकलकर अल्लाह के पसंदीदा मुकाम की तरफ निकल पड़े तो दरअसल वो जहन्नुम को छोड़कर जन्नत की तरफ आने वाला बन जाता है। ऐसे ही लोगों की कुछ मजीद बातें। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोजी है। और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, बस ये लोग भी तुम में से ही हैं। और रिश्ते नाते वाले इनमें से बाज से ज्यादा नजदीक है अल्लाह के हुक्म में, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 74 से 75। इनका उनवान है सच्चे ईमान का तकाजा, या मुहाजिर बनो या अंसार। ये है पूरी सूरत अल अनफाल का थीम पॉइंट। अल्लाह ताला ने एक ऐसे नुक्ते पे हम सबको रोक दिया कि जहाँ एक ऐसा मुआशरा बनेगा कि जो इस्लाम का एक खूबसूरत रूप बनेगा। मुहाजिर और अंसार कौन होते हैं? अगर पूरी सूरत को एक स्ट्रेच में आपके सामने रख दूं, क्योंकि आगे हम सूरत तौबा पढ़ने वाले हैं और सूरत तौबा के अंदर इस्लाम का नजरिया जिहाद बहुत खुल के आएगा, तो जहन में रखियेगा कि इस्लाम में जंग का मकसद न फतह है और न माल जमा करना है। दो बड़े मकासद होते हैं इस्लाम में जंग के। पहला मकसद होता है अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। अल्लाह का कलमा हर मुल्क पे अल्लाह का झंडा लगे, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे काम किया जाए। और दूसरा मकसद होता है फितने का खात्मा। لوگوں کو اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے سے روکنا، جہاں یہ کام ہوگا وہاں جہاد افنسو ہوگا، اور جہاں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے وہاں ڈیفنسو ہوگا. زمین کے جس ٹکڑے پہ مسلمانوں پہ ظلم ہونے لگتا ہے وہاں فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے. لیکن وہ ملک جو امن کے ساتھ چین کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جہاں صرف ابھی توحید کا نعرہ نہیں بلند ہوتا، تو وہاں اگر وہ چھیڑ خانی کریں گے تو پھر بات ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن زمین کے ٹکڑوں پہ فتنہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو اسلام سے روکا جا رہا ہے وہاں تو قتال ہوگا، لیکن وہ ملک جہاں پہ ابھی اسلام کا نام نہیں آیا لیکن امن اور چین ہے، وہاں تبلیغ کے ذریعے سے جہاد ہوگا، وہاں لوگوں کو دعوی کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں ان تمام کمزوریوں کا سدے باب بتایا کہ جو فتح کے نتیجے میں آ سکتی تھیں. بعض دفعہ جب شکست کے حالات ہوتے ہیں، اپریسو حالات ہوتے ہیں، زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، تو لوگ بہت نپے تلے رہتے ہیں، لیکن فتح کا جشن، فتح کا نشہ انسان کو آپے سے باہر کر دیتا ہے. ہو سکتا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر ایک تاریخ ساز قسم کی فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر کچھ اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی. اس کا ہم نے الحمدللہ بہت تفصیل سے دیکھا کہ 6-7 نکات بتا دیے. فثبتوا، جمے رہو، جب ارادہ کر لیا پیچھے نہیں ہٹنا، ڈیٹرمن ہو جاؤ، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، تمہیں یقین ہو اس بات کا کہ اللہ کی بات جو ہے وہی سچ ہے. پھر اس صورت میں ہم نے مال غنیمت کی جو بانٹ دیکھی والمو کے بعد 10 پارے کا بالکل آغاز تھا، تو یہ اس چیز کی دلیل تھی کہ مسلم ریاست ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی بانٹ کے ساتھ کر دیا. ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں کسی دوسرے کو مال پہنچنے کی دو بنیادی وجوہات عموماً ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے محنت اور دوسری ہوتی ہے وراثت. جس نے جتنی محنت کی اس کو مل گیا، اور بعض دفعہ انسان محنت نہیں کرتا، اس کو ماں باپ سے ورثے میں مل جاتا ہے. لیکن ایک تیسرا بہت بڑا موٹیو جس کا تذکرہ مال غنیمت کی بانٹ میں ہم نے دیکھا، وہ کیا تھا؟ ضرورت. جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیا جائے گا، اور اسی لیے مسکینوں، فقیروں اور ان کو بھی دیا گیا جو میدان جنگ میں نہیں گئے. مجاہد کو اس لیے ملا کہ اس نے محنت کی، لیڈر کو اس لیے ملا کہ اس نے آرگنائز کیا. لیکن جہاں جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی بھیجا جائے گا. اور اس سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ کسی معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے رسک اور ان کے مال اسباب کی ذمہ داری مسلمان حکومت پہ ہے. یاد رکھیے کہ تین قسم کے لوگ معذور ہوتے ہیں. ہینڈی کیپڈ عموماً ہم دیکھتے ہیں ان کو جن کو جسمانی طور پہ کام نہیں کر سکتے، محنت نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ نفسیاتی طور پہ بھی معذور ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ ذہنی طور پہ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. اسی کے اندر آپ دیکھیے کہ ان ایمپلائڈ فرد، جس کو جاب نہیں ملی ہوئی، وہ شخص بھی اصل میں ایک قسم کا ہینڈی کیپ شخص ہوتا ہے. کسی مسلم معاشرے کے اندر اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں کے ان ایمپلائڈ لوگوں کو جابز دے یا ان کے مال کی کچھ انتظام کرے، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پھر چوری چکاری کی طرف آئے گا، پھر وہ لوگوں سے چھین کے لینا چاہے گا، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ امن چین جو ہے وہ برباد ہوتا ہے. اسلام نے وہ خوبصورت اصول دیے کہ جنگ ہو یا امن ہو، ہر حق والے کو اس کا حق ملے. یہی وجہ ہے تاریخ میں مسلمانوں کو اتنی شان ملی. آپ کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم جو فاتح سندھ کے نام سے مشہور ہے، ہندوؤں نے اس کا بت بنا لیا تھا اور اس کو اپنے ٹیمپلز میں رکھتے تھے. کہتے تھے کہ اتنی خوبصورت عادات والا شخص کو انسان نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان کا کردار تھا کہ وہ اتنے خوبصورت تھے، راجہ داہر کے خلاف اس کو ووٹ مسلمانوں نے نہیں کافروں نے بھی دیے تھے. یہ کردار اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. اور جب لوگوں نے غلطیاں کی، ہاں تاریخ میں غلطیاں ہوئی، کچھ مسلمان جب دولت کے نشے میں بادشاہ بن گئے، پھر انہوں نے لوگوں کو اپنی بڑائی کے اندر لانے کے لیے، اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے جہاد کیے، تو یاد رکھیے کہ اس میں قصور ان کا ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے. صحابہ کرام نے جتنی جنگیں اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے بعد کی، وہ وہی دو مقاصد تھے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا یا پھر دوسروں کو پرسیکویشن سے اور فتنوں سے نکالنا ہے اور لوگ اسلام کی طرف آئیں. آج ہوتا کیا ہے کہ جب اسلام کی اور قرآن کی روشنی مان پڑتی ہے تو لوگوں کے اندر اسی قسم کی خرابیاں آتی ہیں. آج کے دور میں جس چیز کی بہت ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ انسان دنیا کو سامنے رکھنے کی بجائے آخرت کو سامنے رکھے. آیت 42 میں دو کناروں کی بات ہوئی تھی. یہ بظاہر تو میدان جنگ بدر کے میدان کی ایک جنگی ترتیب تھی، لیکن یہاں سے ایک بڑا خوبصورت اصول مسلمانوں کو دیا کہ زندگی گزارنے کا وہ راستہ اختیار کرو جو دور کی چیز کو قریب کر دے. لانگ ٹرم پلاننگ کرو شارٹ ٹرم پلاننگ کی بجائے. یہ نہیں کہا کہ جو لوگ سب کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو. دیکھیے، ایک ہوتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ اور ایک ہوتا ہے مجاہد فی الدنیا. دونوں کی سوچ میں یہی فرق ہے. جو مجاہد فی الدنیا ہوتا ہے وہ قریب کے فائدے، دنیا دنی کے فائدے لینے کو پسند کرتا ہے. اس کے برعکس جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ آخرت کو لانا چاہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر آیت 45 میں جہاد کے اندر یا زندگی کے کسی میدان میں، وہ ذہنی جہاد ہو، وہ انٹلیکچوئل وار ہو، وہ تبلیغ کا جہاد ہو، اس کی کامیابی کے اصول بتا دیے کہ فثبتوا. जाओ, जम जाओ, तुम्हें खुद तो अपने दीन पे यकीन हो, जब तुम ठेकी होगे तो तुम दूसरों को कहाँ दोगे। फिर वही फतनाह साहू की बात करके बता दिया कि खुदा के लिए अपनी जात के लिए झगड़ने की बजाय दीन के लिए झगड़ो। तुम अपनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अलग ना हो जाओ, एक दूसरे से बदगुमान न रहो। तुम्हारी जिंदगी में खुशगुमानियां होनी चाहिए, किसी के एक गलती को देख के फौरन बुरे नतीजे पे ना पहुंच जाओ। और जब तक टीम वर्क नहीं होता, जिहाद नहीं होता। आप मैदान जंग में लड़ नहीं सकते अगर हर सिपाही अपनी मर्जी का मालिक हो जाए। तसव्वुर कीजिए जरा, जर्नल जो है या जो भी फौज का सिपा चला रहा है उसको पीछे डाल के हर फौजी के हमें तुमसे ज्यादा अकल है। जिहाद भी बंदे को इज्तमाइयत सिखाता है, इसी तरह तबलीग भी बंदे को इज्तमाइयत सिखाती है, मस्जिदों को चलाना भी इज्तमाइयत सिखाता है। दीन की तालीम इज्तमाइयत की दीन है। जब छोटी छोटी बातों पे अलग होके इंसान दीन को काटता है, अपनी जात को तो बचा लेता है लेकिन तनाजा करके वो इस्लाम को एक कितनी गहरी चोट डाल देता है कि जिसकी वजह से बाज दफा फिर इस्लाम जो है वो टुकड़े टुकड़े रह जाता है। अल्लाह ताला बताता है तबीयतों में इख्तलाफ हो सकता है, तुम्हारे नुक्ता नजर में फर्क होगा, लेकिन इन सारे इख्तलाफात के बावजूद तुम इस्लाम को कभी ना टूटने दो। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस्लाम मुसलमान को लेजर लाइट बनाना चाहता है। आप में से जिन लोगों को थोड़ा सा रोशनी की सलाहियतों को देखने का तजुर्बा होगा, अब देखिए ये जो लाइट हमारे तक पहुंची ना, ये बिखरी हुई होती है। आप किसी एक होल में से लाइट एक थोड़ी सी डाले तो डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये हम बल्बों और रोशनियों की सूरत में करते हैं, लेकिन एक ऐसी भी लाइट होती है कि सारी लाइट्स का एक नुकता होता है, इसको आप लेजर लाइट कहते हैं। अब देखिए वही लाइट जब लेजर की शक्ल में आती है तो वो हड्डियों तक को आजकल काट रही है, वो आपके अंदर से आपकी पथरियों को काट रही है। जब बंदा यूनाइट होता है, जब एक फोकल पॉइंट पे जमा होता है तो मुसलमान लेजर बन जाता है। इस्लाम चाहता है कि डिस्पर्स ना हो, ये बिखरा बनो। हर शुआ जो है अगर अपना अलग रास्ता बना ले, कोई किसी को जलाना तो क्या है, रोशनी भी नहीं दिखा सकती। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमें यही सिखाया, लेकिन इसके लिए अना की कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके लिए खुद छोटा होना पड़ता है। और ये चीज कब होती है मुसलमानों में, जब उनके बीच में कॉज एक हो। मकासिद मुख्तलिफ होते हैं तो रास्ते मुख्तलिफ होने लगते हैं। बास लोग एक रोड पे जाते हुए बिल्कुल एकदम पलट के दूसरी रोड पे निकल पड़ते हैं, क्योंकि एक का मकसद कुछ और था, दूसरे का और। जब मुसलमानों की सारी कोशिशों का रुख अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के दीन का फैलाव होगा तो फिर इंशाल्लाह इंसान बिखरने की बजाय वो एक रोशनी बनेंगे, एक लेजर लाइट बनेंगे। फिर अल्लाह की मोहब्बत वो ग्लू है जो लोगों को जोड़ता है, ये एक मैग्नेट है। इसके साथ जब लोग जुड़ते हैं ना तो इंशाल्लाह फिर ऐसा कुर्बानी वाला दीन सामने आता है। लेकिन जब हम शख्सियात को, नामों को, इदारों को और न जाने किस किस को हम पकड़ के अपनी मोहब्बतों का रुख बना लेते हैं तो फिर वही काम होने लगते हैं जो होते हैं। अब यहाँ पे जो हम सूरत के आखिर में पहुंचे हुए, हमें अल्लाह ताला ने दो किस्म के इंसानों से मुतारिफ कराया, एक है मुहाजिर, एक अंसार। तारीख में तो आपने पढ़ लिया कौन थे, मक्का और मदीना की तारीख में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें आज के दौर के मुहाजिर और अंसार ढूंढने हैं, आज भी मौजूद हैं। देखिए कि उस वक्त तो घर छूटे थे ना, आज की हिजरत फर्क है, ये नजरिया समझने के काबिल है। कल की हिजरत जिस्मानी हिजरत थी, आज की हिजरत जहनी हिजरत है। आज जब बंदा दीन पे आता है तो उसको अपने एंटरटेनमेंट से हिजरत करनी पड़ती है, उसको अपनी पसंद और नापसंद के साथ हिजरत करनी पड़ती है, उसको गुनाहों से हिजरत करनी पड़ती है, उसको मुआशरे के रस्म व रिवाज से हिजरत करनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो शख्स नया नया दीन की तरफ आता है ना, वो अलोन फील करता है। आज के दौर का मुहाजिर कौन है कि जो गुनाहों की जिंदगी को छोड़ के, मुआशरे के रस्म व रिवाज को छोड़ के दीन की तरफ आना चाहता है? इसके बरक्स कुछ लोग वो होते हैं कि जो इस जिद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके होते हैं, कुछ वक्त गुजर चुका होता है, उन्होंने घर वालों को भी माइल कर लिया, उन्होंने अपनी एक जगह बना ली, अब वो स्टेबल हो गए, ये लोग अंसार हैं। इस्लाम क्या चाहता है कि वो लोग जो अब दीन पे जम चुके, जिन्होंने अपने दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर लिया, उनको अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो दीन की तरफ आने वालों के हाथ थामे। आज होता क्या कि जब कोई नया नया दीन पे आता है तो बाज लोग तो और तनकीद करने लग जाते हैं, तानों के तीर डालते हैं, ये कैसा दीन है, एक काम अच्छा करते हो एक बुरा करते हो। इस वक्त मेरा और आपका काम क्या है कि हम खुद को पहचाने। याद रखिए, हर मुसलमान या तो मुहाजिर होगा या अंसार होगा। इस दो के बाद तीसरी टर्म मुनाफिक की है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में हमें यही पैगाम दे दिया कि तुम या तो दीन के लिए कुर्बानियां देने वाले बन जाओ या दीन के लिए कुर्बानियां देने वालों को थामने वाले बन जाओ। और यही है वो सच्चा ईमान, यही है वो जिंदगी गुजारने का तरीका जो एक बंदे से मतलूब है, कि एक इंसान हर उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जो रब के रास्ते में भागने से उसको रोक रही है, और हर उस चीज को सीने से लगा ले जो उसको मकसद की तरफ लेके जाती है। ऐसे दौर में फिर इंशाल्लाह ताला वो मुआशरा बने कि जिसकी बुनियाद इस्लाम पे होगी, और होगा, याद रखिए ये बात लिख लीजिए, जैसे कल के दौर में मुहाजर और अंसार वजूद में आए थे, आज भी आएंगे। कैसे आए थे जरा सोचिए, कोई कुर्बानी देने के लिए कब तैयार होता है? जब उसको यकीन होता है कि मैंने इस दुनिया में नहीं रहना। ये उस नबी की तालीमात थी कि जिन्होंने बदुओं को और पानी पिलाने पे झगड़ा करने वालों और एक खेत से दूसरे खेत में चिड़िया के जाने पे लड़ने वालों को इस तरह जोड़ दिया कि लेने से ज्यादा देने वाले बन गए। वही तालीमात आम हुई थी तो ये मुहाजिर और अंसार बने थे। आज भी यही तालीम आम होगी। जब इस्लाम का नूर आम होगा, जब घर घर में अल्लाह के कलाम का नूर जाएगा, आप देखेंगे कि फिर लोग बदलेंगे, फिर लोग देने वाले बनेंगे। हदीस में आता है क्यामत के करीब, यानी उससे पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग माल ले लेके फिरेंगे कि कोई इसको अल्लाह के रास्ते में कबूल करे। और मुस्लिम हिस्ट्री में यह वाकया गुजर चुका। हजरत उमर रजी अल्लाह अनहु का जो दौर था वो ऐसा खूबसूरत दौर था कि लोग जक़ात लेके फिरते थे कि खुदा के लिए कबूल कर लो, कोई लेने वाला ही नहीं था। क्यों? फलाही रियासत, लोगों की जरूरत पूरी हुई, लोगों के सारे मामले हुकूमत अपने हाथ में लिए, कोई भूखा नहीं रहा। आज भी ये हो सकता है, ये किसी तलवार की बुनियाद पे नहीं होगा। हाँ, ये होगा तो कलम की बुनियाद पे होगा। ये तब होगा जब हम कुरान के इल्म को आम करेंगे, वो सोच देंगे। आज हम हैं, ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। देखिये कि हर बंदा ये सोचता, लो मेरे इससे क्या होगा। लो हम इतने से लोग देखें जरा इस शहर में, लाखों करोड़ों के आगे हम चंद सौ लोग क्या फायदा देंगे। नहीं, देखिए कि हर फल जो होता है ना वो खाया नहीं जाता, कुछ फल गिर के दोबारा जमीन में खाद बन जाता है, लेकिन वो बाद में आने वालों के फल बनने का सबब है। हो सकता है हमारी आज की ये छोटी छोटी टूटी फूटी कोशिशें जमीन में मिल जाए, मट्टी में मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कोई दीन का वो गलबा ना देखें, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह कभी किसी का अजर जाया नहीं करता। एक वक्त आएगा कि जब दीन का फल लोग खाएंगे, जब नस्लें दीन का फल खाएंगी, तो अल्लाह के यहाँ हमारा नाम भी किसी मट्टी के अंदर मिले हुए एक जर्रे की तरह होगा। जब हमें अपनी जात की नुमाइश नहीं चाहिए होगी, तो इंसान को इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसी काम को कोई उसकी तरफ मंसूब करे कि ना करे, बल्कि वो तो हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि अल्लाह की निगाहों में मेरा काम कबूल हुआ कि नहीं। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह, ये सूरत अनफाल जो इतने खूबसूरत लेसन से भरी हुई थी, तो एक बार हमें जिंदगी में मौका दे मजीद कि हम इसको लफ्ज़ पर लफ्ज़ समझ सकें। जिंदगी बदल जाती है, सूरत अनफाल और सूरत तौबा बंदे का रुख बदल देती हैं। आप सीधा चलते चलते वापस खुद अपनी खुशी से टर्न लेके वहीं पलटना पसंद करते हैं जहां से आप चले थे, फिर आप एक नई जिंदगी बसर करना चाहते हैं, और अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो जाएं।